तुलसी की भावुकता का शेष अंश, पृष्ठ 52। उस पुरुष समाज के प्रभाव से चित्रकूट की रमणीयता में पवित्रता भी मिल गई। उस समाज के भीतर नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग आदि के संघर्ष से जो धर्म ज्योति फूटी, उससे आसपास का सारा प्रदेश जगमगा उठा। उसकी मधुर स्मृति से आज भी वहाँ की वनस्थली परम पवित्र है। चित्रकूट की उस आभा की कार्रवाई क्या थी? धर्म के एक-एक अंग की पूर्ण और मनोहर अभिव्यक्ति थी। रामचरितमानस में वह सभा एक आध्यात्मिक घटना है। धर्म के इतने स्वरूपों की एक साथ योजना, हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियों की एक साथ उद्भावना तुलसी के ही विशाल मानस में संभव थी। यह संभावना उस समाज के भीतर बहुत से भिन्न भिन्न वर्गों के समावेश द्वारा संगठित की गई है। राजा और प्रजा, गुरु और शिष्य, भाई और भाई, माता और पुत्र, पिता और पुत्री, ससुर और जमात, सास और बहू, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण और शूद्र, सभ्य और असभ्य की परस्पर व्यवहारों का उपस्थित प्रसंग के धर्म गांभीर्य और भावोत्कर्ष के कारण अत्यंत मनोहर रूप प्रस्फुटित हुआ। धर्म के उस स्वरूप को देख सब मोहित हो गए, क्या नागरिक या ग्रामीण और क्या जंगली। भारतीय शिष्टता और सभ्यता का चित्र यदि देखना हो तो इस राज समाज में देखिए, कैसी परिष्कृष्ट भाषा में, कैसी प्रवचन पटुता के साथ प्रस्ताव उपस्थित होते हैं, किस गंभीरता और शिष्टता के साथ बात का उत्तर दिया जाता है, छोटे बड़े की मर्यादा का किस सरसता के साथ पालन होता है। सबकी इच्छा है कि राम अयोध्या को लौटे, पर उनके स्थान पर भरत वन को जाएं। यह इच्छा भरत को छोड़ शायद ही और किसी के मन में हो। अपनी प्रबल इच्छाओं को लिए हुए लोग सभा में बैठते हैं, पर वहां बैठते ही धर्म के स्थिर और गंभीर स्वरूप के सामने उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं का कहीं पता नहीं रह जाता। राजा के सत्य पालन से जो गौरव राजा और प्रजा दोनों को प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, उसे खंडित देखना वे नहीं चाहते। जनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि धर्म तत्व के पारदर्शी जो कुछ निश्चय कर दें, उसे वे कलेजे पर पत्थर रखकर मानने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रसंग में परिवार और समाज की ऊंची नीची श्रेणियों के बीच कितने संबंध का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। देखिए, पहला, राजा और प्रजा का संबंध लीजिए। अयोध्या की सारी प्रजा अपना सब काम धंधा छोड़ भरत के पीछे राम के प्रेम में उन्हीं के समान मग्न चली जा रही है, और चित्रकूट में राम के दर्शन से आह्लादित होकर चाहती है कि 14 वर्ष यहीं काट दे। दूसरा, भरत का अपने बड़े भाई के प्रति जो अलौकिक स्नेह और भक्ति भाव वहां से यहाँ तक झलकता है, वह तो सबका आधार ही है। तीन, ऋषि या आचार्य के सम्मुख प्रगल्भता प्रकट होने के भय से भरत और राम अपना मत तक प्रकट करते सुकुचाते हैं। चार, राम सब माताओं से जिस प्रकार प्रेम भाव से मिले, वह उनकी शिष्टता का ही सूचक नहीं है, उनके अंतःकरण की कोमलता और शुद्धता भी प्रकट करता है। पृष्ठ 53। 5, विवाहिता कन्या को पति की अनुगामिनी देख जनक जो यह हर्ष प्रकट करते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सूजस धवल जग कह सब को, वह धर्म भाव पर मुग्ध होकर ही। 6, भरत और राम दोनों जनक को पिता के स्थान पर कहकर सब भार उन्हीं पर छोड़ते हैं। साथ सीता जी अपने पिता के डेरे पर जाकर माता के पास बैठी हैं। इतने में रात हो जाती है और वे असमंजस में पड़ जाती है। कहत न सिय सकुचित मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। पति तपस्वी के वेश में भुसैया पर रात काटे और पत्नी उससे अलग राजसी ठाट बाट के बीच रहे, यही असमंजस की बात है। आठ जब से कौशल्या आदि आई है तब से सीता बराबर उनकी सेवा में लगी रहती है। नौ ब्राह्मण वर्ग के प्रति राज वर्ग के आदर और सम्मान का जैसा मनोहर स्वरूप दिखाई पड़ता है, वैसा ही ब्राह्मण वर्ग में राज्य और लोक के हित साधन की तत्परता झलक रही है। दस केवट के दूर से ऋषि को प्रणाम करने और ऋषि के उसे आलिंगन करने में उभय पक्ष का व्यवहार सौष्ठव प्रकाशित हो रहा है। ग्यारह वन्य कोल किरातों के प्रति सबका कैसा मृदुल और सुशील व्यवहार है। कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। इस शक्ति की परीक्षा का रामचरित से बढ़कर विस्तृत क्षेत्र और कहाँ मिल सकता है। जीवन स्थिति के इतने भेद और कहाँ दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में जो कवि सर्वत्र पूरा उतरता दिखाई पड़ता है, उसकी भावुकता को और कोई नहीं पहुंचा सकता। जो केवल दाम्पत्य रति में ही अपनी भावुकता प्रकट कर सके या वीरोत्साही का अच्छा चित्रण कर सके, वे पूर्ण भावुक नहीं कहे जा सकते। पूर्ण भावुक वही हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति के मर्म स्पर्शी अंश का साक्षात्कार कर सके और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपनी शब्द शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सकें। हिंदी के कवियों में इस प्रकार की सर्वांगपूर्ण भावुकता हमारे गोस्वामी जी में ही है, जिसके प्रभाव से रामचरितमानस उत्तरी भारत की सारी जनता के गले का हार हो रहा है। वात्सल्य भाव का अनुभव करके पाठक तुरंत बालक राम लक्ष्मण के प्रवास का उत्साहपूर्ण जीवन देखते हैं, जिसके भीतर आत्मालंबन का विकास होता है। फिर आचार्य विषय कृति का स्वरूप देखते हुए वे जनकपुर में जाकर सीताराम के परम पवित्र दाम्पत्य भाव के दर्शन करते हैं। इसके उपरांत अयोध्या त्याग के करुण दृश्य के भीतर भाग्य की अस्थिरता का कटु स्वरूप सामने आता है। तदंतर पथिक वेशधारी राम जानकी के साथ साथ चलकर पाठक ग्रामीण स्त्री पुरुषों के उस विशुद्ध सात्विक प्रेम का अनुभव करते हैं, जिसे हम दाम्पत्य वात्सल्य आदि कोई विशेषण नहीं दे सकते, पर जो मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। पृष्ठ 54 रमणीय वन पर्वत के बीच एक सुकुमारी राजवधु को साथ लिए दो वर आत्मावलंबी राजकुमारों को विपत्ति के दिनों को सुख के दिनों में परिवर्तित करते पाकर वे वीर भोग्या वसुंधरा की सत्यता हृदयंगम करते हैं। सीता हरण पर विप्रलभ श्रृंगार का माधुर्य देखकर पाठक फिर लंका दहन के अद्भुत भयानक और विभत्स दृश्य का निरीक्षण करते हुए राम रावण युद्ध के रौद्र और युद्ध वीर तक पहुँचते हैं। शांत रस का पुट तो बीच बीच में बराबर मिलता ही है। हास्य रस का पूर्ण समावेश रामचरितमानस के भीतर न करके नारद मोह के प्रसंग में उन्होंने किया है। इस प्रकार काव्य के गुण और उच्च उद्देश्य को समझने वाले मानव जीवन के सुख और दुख दोनों पक्षों के नाना रूपों के मर्म स्पर्शी दृश्यों को देखकर गोस्वामी जी के महत्व पर मुग्ध होते हैं और स्थूल बहिरंग दृष्टि रखने वाले भी लक्षण ग्रंथों में गिनाए हुए नवरसों और अलंकारों पर अपना आह्लाद प्रकट करते हैं। पैराग्राफ चेंज। यहाँ पर कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी मनुष्य जीवन की बहुत अधिक परिस्थितियों का जो सन्निवेश कर सके वह रामचरितमानस की विशेषता के कारण। इतने अधिक प्रकार की मानव दिशाओं का सन्निवेश आप से आप हो गया, ठीक है, पर उन सब दिशाओं का यथा तथा चित्रण बिना हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति, मन स्पर्शी स्वरूपों की उद्भावना और शब्द शक्ति की सिद्धि के नहीं हो सकता। मानव प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं। यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता शक्ति है, जो प्रगतिशील है तो हर्ष पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कूढ़न, शोक है तो करुणा, आनंदो उत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता। तुलसीदास जी के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान है। पैराग्राफ चेंज। गोस्वामी जी की भावात्मक सत्ता का अधिक विस्तार करते हुए भी यह पूछा जा सकता है कि क्या उनके भाव में पूरी गहराई या तीव्रता भी है? यदि तीव्रता न होती, भावों का पूर्ण उद्रेक उनके वचनों में न होता, तो वे इतने सर्वप्रिय कैसे होते? भावों के साधारण उद्गार से ही सबकी तृप्ति नहीं हो सकती। यह बात अवश्य है कि जो भाव सबसे अधिक प्रतिष्ठ है उसकी व्यंजना सबसे अधिक गूढ़ और ठीक है। जो प्रेम भाव अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ उन्होंने प्रकट किया है वह अलौकिक है, अविचल है और अनन्य है। वह घन और चातक का प्रेम है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अपना उद्देश्य वह आप ही है। उसकी प्यास, उसकी उत्कंठा सदा बनी रहे, इसी में उसकी मर्यादा है, इसी में उसका महत्व है। चातक तुलसी के मते स्वतिहु पिए न पानी, प्रेम तिसा बाढ़ती भली, घटे घटेगी आनी। प्रिय के लाख दुर्व्यवहार से भी वह हटने वाला नहीं है। बरखी पारुष पाहन पयद पंख कर टूक टूक, तुलसी परन चाहिए चतुर चात कहीं चूक। उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर, शीतव की चातक मेघ तजी, कबहू दूसरी ओर। वह मेघ के लोकहित का स्वरूप के प्रति आपसे आप हैं। वह जगत के हित को देखकर कहते हैं, जीव चराचर जहाँ लग हैं सबको हित मेह, तुलसी चातक मन बसियो घनसो सहज स्नेह।